नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और शतः तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आपका।
शबाब, आज के दिन को हम सुपर संडे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज शतरंज में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कमाल करते हुए विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीतकर खेल प्रेमियों को गौरवान्वित किया।
बिल्कुल, और नए साल का तोहफा भी आप कह सकते हैं। जिस तरह से 37 वर्ष की आयु में ये खिताब उन्होंने जीता और दो बार इस रैपिड चेस को जीतने वाली सिर्फ विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी बनी, तो निश्चित रूप से आज के दिन को सुपर संडे आपने बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल, धन्यवाद। तो शबाब, इस पर हम विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर गर्व जताया, इस पर भी बात करेंगे, और दीगर खेल खबरों पर भी आपके साथ चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर गर्व जताया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरस्कार 2024 के लिए नामांकित खिलाड़ियों की घोषणा की, और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने फाइनल में प्रवेश किया। शुरुआत शतरंज के साथ करेंगे। न्यूयॉर्क में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरीन सुकंदर को हराकर विश्व रैपिड और ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हम्पी ने 11वें राउंड में 8.5 अंक हासिल करके टूर्नामेंट में जीत हासिल की। कोनेरू हम्पी चीन की जू वेनजुन के बाद यह खिताब एक से ज्यादा बार जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। हम्पी ने इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में यह खिताब जीता था। विवरण दे रहे हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। श्री मोदी ने दूसरे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर शतरंज की ग्रैंड मास्टर की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना की है। यह खिताब जीतकर वे एकमात्र भारतीय बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुश्री हम्पी का धैर्य और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। कोनेरू हम्पी ने जीत के बाद कहा कि 37 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनना आसान नहीं है।
इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, लाइक माय हस्बैंड एंड माय पेरेंट्स, दिस support a lot, and especially my parents look after my daughter when I travel. And yes, it's not to become a world champion when you're 37, quite difficult when you get older to keep that motivation and also to stay sharp when required. I'm glad that I made.
कोनेरू की जीत 2024 में भारतीय शतरंज की शानदार सफलता में एक और उपलब्धि जोड़ती है। इससे पहले देश ने इस गर्मी में शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला प्रतियोगिता दोनों में स्वर्ण पदक जीता था, और गुकेश डी ने विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
शबाब, आज कोनेरू हम्पी ने इतिहास रच दिया।
जी हाँ, बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि दिसंबर महीने में दो बड़ी खिताबें जी शतरंज में भारत को मिली है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको याद होगा 12 दिसंबर का दिन, जब डी डुकेश सबसे कम उम्र में विश्व विजेता बने थे, और फिर आज 29 दिसंबर यकीनी तौर पर भारतीय खेल के लिए सुपर संडे, और इस खिताबी जीत की जो सबसे अहम कड़ी के तौर पर जिसे देखा जाए, जो सबसे असल बात है वो ये है कि अंतिम राउंड से पहले कोरोना हम्पी और 6 खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर थीं। इसमें से 5 खिलाड़ी ने ड्रॉ की अपनी बाजी, और इन्होंने अंतिम बाजी जीती जिसके कारण वो विश्व विजेता बनी। तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, 6 से 7 साल की आयु में स्टेट चैंपियन बनना, 5 साल से शतरंज खेलना शुरू करना, और 20 वर्ष से भी कम आयु में अगर आपको पद्म अवार्ड आपके शतरंज के खेल के लिए मिल जाता है, सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी भारत में, तो इससे बड़ी उपलब्धियों का तो एक अंबार है इनके नाम।
सबसे बढ़कर बात यह है कि बढ़ती उम्र में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। जब लोग थकने लगते हैं खिलाड़ी का जहां तक प्रश्न है, 37 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है, एक बच्चे की वो माँ है, उसके बावजूद उन्होंने अपने खेल पर फोकस किया और हमें गौरवान्वित करने का उन्होंने बल दिए।
बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अथर भाई के, देखिए रैपिड और चेस में दोनों में फर्क है, रैपिड चेस और ऐसे चेस जो होता है, कि इसमें रैपिड में समय कम मिलता है चाल चलने के लिए आपको, तो कम समय में आप चाल चल करके इतने बड़े खिलाड़ी को पराजित करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और सिर्फ रैपिड की बात ही हम नहीं कर रहे हैं, रैपिड के अलावा भी देखें तो अन्य प्रारूपों में भी शानदार प्रदर्शन हाल के दिनों में रहा है। 2022 में विश्व महिला ब्लिट्स शतरंज में रजत पदक जीता, इसी वर्ष महिला कैंडिडेट्स जीतने के करीब आ गई थी। हालांकि बुडापेस्ट ओलंपियाड में वो भाग नहीं ले सकी थी निजी कारणों से, लेकिन वहां की दावेदारी भी बहुत मजबूत थी। तो निरंतरता के साथ जब से अपना करियर शुरू किया, शानदार प्रदर्शन रहा है।
शबाब, शतरंज ओलंपियाड, उसके बाद डी कुकेश की खिताबी जीत, और फिर अब कोनेरू हम्पी के ये शानदार जो खिताबी जीत रही है, क्या भारतीय शतरंज का ये स्वर्णिम दौर चल रहा है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर को जब स्पोर्ट्स स्कैन जाएगा
जी
तो जब ईयर एंडर पर बात होगी, निश्चित रूप से होगी, चूंकि लगातार स्पोर्ट्स स्कैन इस पर काम करता रहा है, तो उसमें अगर पहले नंबर पर कोई खेल आएगा तो शतरंज ही आएगा। चूंकि जो उपलब्धियां रही हैं 2024 में, आज के बाद खासतौर से एक नया आयाम जुड़ गया है, और उसमें तो सबसे ज्यादा बात शतरंज पर होनी चाहिए, और अन्य खेल भी हैं जिनमें उपलब्धि रही है भारत की, लेकिन शतरंज एक ऐसा खेल है जो आम लोगों का खेल नहीं माना जाता है, और खिलाड़ियों की उपलब्धि तभी सामने आती है जब वो खिताब जीतते हैं। मीडिया में भी आप देखते होंगे,
बिल्कुल,
लेकिन जिस तरह से खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं दोनों वर्गों में, नए नए ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत आज से 30-35 साल पहले हुई थी, और उससे भी पहले की बात है
जी,
तो उसको आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
शबाब, भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्यांशु बरुआ ने कोनेरू हम्पी की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इट इज अ ग्रेट ग्रेट न्यूज जो अभी खत्म हुआ है वर्ल्ड रैपिड वुमेन्स चैंपियनशिप, जिसमें हमारा कोनेरू हम्पी वो दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। मेरे ख्याल से ये जो कोनेरू हम्पी ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, इसके लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशन होगा महिला खिलाड़ी के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आप लोगों का जो ओलंपिया टीम जब वापस आया था, पूरा फेलिसिट किया था हम लोगों टीम को, प्लस अभी गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको भी उन्होंने बुला के फेलिसिट किया है।
शबाब, इन उपलब्धियों का कितना लाभ भारतीय शतरंज के युवा खिलाड़ियों को होगा?
जी, 37 वर्ष की आयु में अगर कोई विश्व खिताब जीतता है तो आप समझ सकते हैं कि युवा खिलाड़ी के लिए कितनी प्रेरणा के स्रोत है, कितनी बड़ी वो। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है जब उनको बधाई संदेश भेजा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे प्रेरणा निश्चित रूप से युवा खिलाड़ियों को मिलेगा, और एक लंबी कतार है शतरंज के खेल में भी, हमारे देश में काफी तेजी से शतरंज के विसात पर आगे बढ़ रहे हैं हमारे खिलाड़ी।
इस बीच 18 वर्षीय बोलोडर मुर्जिन ने ओपन रैपिड जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में उपलब्धि हासिल की। बढ़ते हैं आगे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्दियों के इस मौसम में देश भर में खेलों और फिटनेस से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बस्तर में अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है जिसका नाम है बस्तर ओलंपिक।
पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। बस्तर ओलंपिक केवल एक खेल आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा मंच है जहां विकास और खेल का संगम हो रहा है।
शबाब, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करते हैं, और भारत में खेलों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।
बिल्कुल सही की बात है। जिस तरह से लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना, जीत के साथ ही फोन पर उन्हें बधाई देना, और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बल्कि देश में बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने की दिशा में भी कदम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिस ओलंपिक की बात बार बार प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो शब्द ओलंपिक की शुरुआत बस्तर से हो चुकी है, भले ही वो स्थानीय ओलंपिक है, लेकिन जिस तरह से इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, और अगर देखा जाए, आप जानते ही अथर के जब अविभाजित बस्तर था तो वो केरल राज्य से भी बड़ा इलाका था, अब भले उसे 7 जिलों में बांट दिया गया है, लेकिन सभी जगह से खिलाड़ी एथलीट आए। और पायल का जिक्र तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, जिसने कोई भी सुविधा न रहते हुए भाला फेंक और फिर कबड्डी में पदक जीता।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे क्रिकेट की। मेलबर्न में भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। आज का खेल समाप्त होने के समय नाथन लियोन 41 और स्कॉट बोलैंड 10 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को अब तक 333 रन की बढ़त मिल चुकी है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए थे। एक रिपोर्ट।
जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के बाद निचले क्रम की उमदा बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में 9 विकेट पर 228 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 333 रन कर मैच पर शिकंजा कस लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 105 रन की बढ़त हासिल करने के बाद बुमराह और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी के सामने दूसरी पारी में 91 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने 56 रन पर 4 विकेट लिए हैं जबकि मोहम्मद सिराज ने 66 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 8वें, 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों ने लगभग 35 ओवर बल्लेबाजी की। अगर भारतीय बल्लेबाज अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन नहीं करते हैं तो मेजबान टीम के निचले क्रम का ये प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। भारत के लिए जीत अब भी असंभव नहीं है लेकिन इसके लिए उसे अपने सीनियर बल्लेबाजों के साथ साथ ऋषभ पंत से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
बिल्कुल मुश्किल तो नहीं लेकिन असंभव तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर हो सकती है। शबाब, कल अंतिम दिन में भारत के लिए क्या संभावना है ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कल का दिन कितना चुनौतीपूर्ण है भारतीय टीम के लिए?
जी, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। सबसे पहले तो पहली चुनौती भारत की है कि जो अंतिम विकेट की साझेदारी चल रही है
जी,
उसको तोड़ा जाए जितना जल्दी। और अगर भारत को 350 रनों तक का लक्ष्य मिल जाता है तो मेलबोर्न के एमसीजी के मैदान पर अभी तक इस लक्ष्य का किसी ने पीछा किया नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो 350 या उसके आसपास का अगर लक्ष्य भारत को मिलता है और जितने ओवर्स अभी बचे हुए रहेंगे तो उसमें अगर अच्छी शुरुआत मिल गई तो भारत जीत की तरफ जा सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि आपके जो सलामी जोड़ी है वो किस तरह की शुरुआत भारत को देती है। लेकिन एक बात और भारतीय खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के मन मस्तिष्क में होगी और वो ये होगी कि अब एक सीट बची है क्योंकि पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत करके पहला दक्षिण अफ्रीका फाइनल में पहुंच चुका है और अब दूसरे के लिए अब तीन उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका। तो अगर भारत हारता है तो वैसी स्थिति में उसकी दावेदारी कमजोर हो जाएगी। ड्रॉ रहने की स्थिति में हो सकता है कि दावेदारी बरकरार रहे क्योंकि सिडनी में अभी एक टेस्ट मैच और होना है श्रृंखला का। तो ये निर्भर करेगा कि परिस्थिति क्या होती है, परिस्थितियों के हिसाब से टीम प्रबंधन यह फैसला करेगी। जो मैदान में खिलाड़ी बल्लेबाज जाएंगे उन्हें यह बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर टेस्ट मैच में जिस तरह का देखा जाता है काफी रोमांच रहेगा कल पूरे दिन।
तो क्या आशा के दीप रोशन रहेंगे या फिर ये सफर यहीं थम जाएगा?
नहीं नहीं, ओपन है ये टेस्ट मैच अभी भी, बिल्कुल आशा के दीप रोशन है। और मैंने जैसा कि कहा कि ये एक ड्रॉप पिच है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समतल उछाल है या बल्लेबाजी करना मुश्किल है। तो अच्छी शुरुआत अगर मिल गई तो भारत जो भी लक्ष्य मिलता है उसका पीछा कर सकता है। लेकिन यदि अगर मुश्किलात पेश आती हैं तो भारत ड्रॉ करना ही बेहतर समझेगा हारने के मुकाबले।
बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरस्कार 2024 के लिए नामांकित खिलाड़ियों की घोषणा की है। ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी जया भारती।
इस गेंदबाज अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित खिलाड़ियों में शामिल किया गया है जिसमें जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, पाकिस्तान के बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड शामिल हैं। अर्शदीप ने भारत के लिए T20 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस वर्ष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 36 विकेट लिए। महिलाओं के उभरते हुए क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रेणी में भारत की श्रेयंका पाटिल प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम सूची में शामिल है जबकि स्मृति मंदाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ पुरस्कार के लिए चुना गया है। आईसीसी ने महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, उभरते हुए पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन की घोषणा की है। आईसीसी पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा अगले वर्ष जनवरी के अंत में की जाएगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने हैदराबाद में गत चैंपियन सर्विसेज को 4-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और बैडमिंटन की अगर बात करें तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज चीन के शेंझेन में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को सीधे गेम में हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। 23 वर्षीय लक्ष्य सेन ने लेनियर को 21-17, 21-11 से हराया। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शबाब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।